भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप द्वितीय अध्याय श्लोक 54 अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य it should have been together. Theta hyphen the other. Just make a hyphen. Theta pragyasya. Ka bhasha. Samadhisthasya. Keshava Sthita Pragyasya Ka Bhasha Samadhisthasya Keshava Sthitadhi Kim Prabhasheta Sthitadhi Kim Prabhasheta Kimashita Vrajeta Kim Sthita Pragyasya Ka Bhasha Samadhisthasya Keshava Sthitadhi Kim Prabhasheta Kimasita Vrajeta Kim तो हम अगर आप याद करने का कोशिश करेंगे तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ये श्लोक का पहला शब्द क्या उसको याद करने का कोशिश करना पड़ेगा तो ये क्या है पहला शब्द है प्रथम शब्द क्या है इस श्लोक का पहला शब्द क्या है स्थित प्रज्ञस्य तो स्थित प्रज्ञस्य याद आने से बाकी याद आता है आ रहा है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा और हाँ उसके बाद दूसरा समाधिस्थस्य और बाकी तो सहज है समाधिस्थस्य केशव तो क्या हुआ दो लाइन इकट्ठा होकर स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव और तीसरी लाइन का पहला शब्द क्या है स्थितधि किं प्रभाषेता और उसके बाद किमाशीता व्रजेत किं और ये शब्द का ये श्लोक का हर शब्द का अर्थ हम आप विचार करते हैं। स्थित प्रज्ञा मतलब, प्रज्ञा का मतलब क्या है? प्रज्ञा ज्ञान। तो स्थित प्रज्ञा का मतलब क्या है? जिसका प्रज्ञा, जिसका ज्ञान स्थिर हो गया है। तो ज्ञान कब स्थिर होता है? ज्ञान स्थिर कब होता है? जब भगवत भावनामय चिंतन होता है। और बाकी सब चिंचल चिंतन क्या करता है? मन को चंचल बना देता है। केवल मन तभी स्थिर होता है जब हमारा चिंतन भगवान में स्थिर होता है। तो उस जो प्रज्ञा, उस जो ज्ञान है, उसको क्या कहा जाता है? स्थित प्रज्ञा। जिसको वैसी ज्ञान है उनको स्थित प्रज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, स्थित प्रज्ञा से का भाषा, भाषा का मतलब क्या है? भाषा, भाषा, हाँ, भाषा का मतलब है बोलना, वाणी, भाषा। तो मतलब स्थित प्रज्ञा से का भाषा, जिसका, हाँ, जो स्थित प्रज्ञा है उनका भाषा कैसा होता है, क्या लक्षण, लक्षण क्या है पूछ रहे हैं। वो कैसे बोलते हैं, उनका भाषा कैसी है, स्थित प्रज्ञ का भाषा। और समाधिस्थस्य, समाधि में स्थित पुरुष का, हे कृष्णा, जो व्यक्ति समाधि में स्थित हुआ है उनका उनका मनोभाव कैसा होता है, और किमाशित, उन्हें स्थितधि की, और स्थितधि का मतलब जिनका धी मतलब बुद्धि स्थिर हो गया है, कृष्ण भावना में स्थिर व्यक्ति, किम, क्या प्रभाषित बोलते हैं, किम अर्थात कैसे आसित रहता है, और ब्रजेत चलते हैं, चलता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञा के, स्थित प्रज्ञा के क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, तथा उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठा बैठता है और चलता है। स्थित प्रज्ञा से क्या भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभाषेत, किमाशीत ब्रजेत। ये इसके बाद भगवान इसका जवाब देंगे, उनका लक्षण कैसा है। मतलब जब जो व्यक्ति भगवत चेतन चिंतन में स्थिर हो जाता है उनको, उनका लक्षण क्या है, उनका वाणी कैसा होता है, वो कैसे बोलते हैं, किमासीत कैसे बैठते हैं मतलब कैसे विराज करते हैं, और ब्रजत किंग कैसे चलते हैं, उनका, ये अर्जुन भगवान के पास पूछ रहे हैं। ये इस अध्याय में, द्वितीय अध्याय में भगवान अर्जुन को सांख्य योग के बारे में और बुद्धि योग के बारे में बताए थे। सांख्य योग में भगवान विचार किया, किसका विचार हुआ था शुरू में, आपको याद है? हाँ, ये शरीर और आत्मा का, आत्मा में क्या फर्क है, अंतर क्या है, उसका विचार हुआ था शुरू। और कैसे भगवान विचार किए थे, वैसे विचार कैसे किए थे भगवान, वैसे देह और देही का अंतर क्या होता है भगवान को बताए थे। देह कैसे, किससे बना है, भौतिक पदार्थ से बना है, पंचभूत से बना है। वो पंचभूत क्या है, मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंचभूत से ये शरीर बना है। परंतु यह देही और देह का जो मालिक है, यह देह, यह शरीर, यह देह किसका है? यह देह किसका है? जैसे आपका जो शरीर है वो किसका है? आपका है, आपका शरीर है। और आप कौन है?
आप है आत्मा।
ऐसे हम सब आत्मा है और ये हमारा शरीर है। तो भगवान ऐसे शरीर और आत्मा के बीच क्या फर्क है, आत्मा और शरीर में क्या अंतर है, ये समझाए। जैसे भगवान बताए हैं ये शरीर नाशवान है, ये शरीर का परिवर्तन होता है, शरीर का जन्म होता है, और जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु भी होगा। जातस्य हि ध्रुवं मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु अवश्य ही होगा। परंतु आत्मा का ना तो जन्म होता है ना तो आत्मा का मृत्यु होता है। ना जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा का ना तो जन्म होता है ना जायते और म्रियते वा कदाचित, और कभी भी इस आत्मा का मृत्यु भी नहीं हो। नायं भूत्वा भविता। जो आत्मा है वो रहेगा हर समय, और ये आत्मा जो अज है, जन्महीन है, अजन्मा है, शरीर का मृत्यु होने से, शरीर को हत्या करने से भी आत्मा का विनाश नहीं होता। तो ये जो विचार, ये कौन सी दर्शन के माध्यम भगवान इसको समझाया अर्जुन को, उस दर्शन को सांख्य योग कहा जाता है। सांख्य योग के माध्यम ऐसे, मतलब जिसके द्वारा विश्लेषण होता है, ये वस्तु क्या है, ये क्या है। सांख्य दर्शन में ऐसा विचार के द्वारा वहां का दर्शन का सिद्धांत प्रतिष्ठा होता है। जैसे ये शांख योग है, शांख है एक दर्शन का, एक वैदिक दर्शन का एक अंग। आप जानते हैं वेद का जो दर्शन है, वैदिक दर्शन जो है, उसका कितना क्रम है या कितना कोटि है? छ। वेरी गुड, छ। जिसे षट दर्शन कहा, वो छह दर्शन कौन, कैसा, कौन सी है, मालूम है आपको? छह दर्शन होता है, कर्म मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, शांख योग और पूर्व उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, मीमांसा का मतलब क्या होता है? सिद्धांत, मीमांसा। तो पहली मीमांसा जो है वो है कर्म, करने से कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है ना। हम कर्म करते हैं, कर्म के अनुसार हमें उसका फल मिलता है। तो ये है पहली मीमांसा, पूर्व मीमांसा। पूर्व का मतलब क्या है? पहले का मीमांसा। हम जैसे कार्य करते हैं उसके अनुसार हमें फल मिलता है। मतलब भला काम करने से फल कैसा होता है? अच्छा काम करने से उसका फल भी अच्छा होता है, और अच्छा फल के कारण हमें सुख मिलता है। और बुरा काम करने से क्या होता है? उसका फल बुरा होता है, और बुरा काम करने से उसका फल के रूप में हमें दुख मिलता है। तो वैसे हम कर्म के फल के अनुफल के कारण हमें कर्म के फल भोगना पड़ता है। तो सिद्धांत क्या हुआ? क्योंकि बुरा काम करने से बुरा फल मिलता है और उसके कारण हमें कष्ट मिलता है और हम कष्ट नहीं चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम सुख चाहते हैं, तो उसके कारण सुख प्राप्ति के लिए हमें भला काम करना। वो भला काम को क्या कहा जाता है, पुण्य कर्म कहा जाता है। अर्थात वेद के निर्देश के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। यह है पूर्व मीमांसा या कर्म मीमांसा। उसके बाद न्याय, न्याय का विचार मतलब क्या होता है, न्याय जिसे इंग्लिश में लॉजिक कहा जाता है, न्याय शास्त्र। जैसे न्याय शब्द का अर्थ है जैसे, जैसे ऐसे विचार होता है, ये करने से ये बहुत सारे वैसे न्याय हैं, जैसे अर्धकुक्कुटी न्याय है। अर्धकुक्कुटी न्याय कैसा है, कुक्कुटी का मतलब है क्या, चिकन, मुर्गी क्या बोलते हैं ये चिकन को, इंग्लिश
चूजा, मुर्गी का बच्चा।
अच्छा चिकन, हाँ मुर्गी, मुर्गी ही जिसको अंडा मिलता है, मुर्गी है। तो अर्धकुक्कुटी का न्याय कैसा है कि को मुर्गी मुंह से खाती है और पीछे से सामने अंग से वो खाती है और पीछे का अंग से वो अंडा देती है। तो खाने खाने के लिए खर्चा होता है, तो उसको सामने का जो अंग है वो बात दे दो, पीछे का अंग से रख लो, क्योंकि उस अंग से अंडा देती है। तो ये अगर हमारा विचार होगा तो ये क्या सही रहेगा, नहीं, उसको खिलाना भी पड़ेगा और उसके फलस्वरूप अंडा भी मिलेगा। ये एक ऐसे न्याय का विचार है कि ऐसे न्याय, अगर हम ऐसे सोचेंगे तो क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। हम सोचेंगे कि वो सामना अंश से खाती है तो उसको सामना अंश बात दे दो, उसका गर्दन काट दो, है? और गर्दन अगर काट दिया तो पीछे से अंडा मिलेगा। हम लोगों को तो अंडा का जरूरत नहीं है, जो अंडा लाए जो खाते हैं उनके लिए। तो ऐसे तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम कुछ चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है, कुछ प्राप्ति के लिए हमें कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम कुछ चाहते हैं भला कुछ, तो हमको उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा। और न्याय का और एक विचार ऐसे होता है कि हमारे शरीर के हर अंग कष्ट प्राप्त होता होने के लिए, हमें सारे अंग से हमें कष्ट प्राप्ति होता है। हमारे शरीर का कोई भी अंग हम ले ले तो हम अगर विचार करते हैं तो देखते हैं इस अंग से हमें कितना सारे कष्ट मिल सकते, परंतु हम अगर उसको उस अंग को हम सुख देना चाहते हैं तो देखते किसी भी उपाय से हम उसको सुख नहीं दे सकते, है ना। जैसे ये आप सोचिए, आपका ये जो अंगली है, इस अंगली को आप कितना रूप से कष्ट दे सकते हैं, बहुत सारे ढंग से आप दे सकते हैं। थोड़ा सा सोचने से हम देख सकते हैं, हम एक चक्कू से इसको काट सकते हैं, क्या मिलेगा, कष्ट मिलेगा। आग से जला सकते हैं, क्या मिलेगा, कष्ट मिलेगा। पत्थर से इसको ये कर सकते हैं, कष्ट मिलेगा। ऐसे कितने रूप से हमें कष्ट प्राप्त हो सकता है इस अंगली को, परंतु इस अंगली को हम सुख देना चाहते हैं तो कैसे हम इसको सुख देंगे, सुख दे सकते हैं, थोड़ा बहुत मिल सकता है, थोड़ा सा। इसको बहुत अच्छा मलम लगा के इसको अगर मालिश किया थोड़ा सा सुख मिलेगा। परंतु जिस दुख की मात्रा, कष्ट की मात्रा जैसे है, उसके अनुसार सुख की मात्रा बिल्कुल नगण्य है, है ना। तो ये जो विचार है, ये हमारा शरीर का हर अंग में प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, देखिए, ये अब न्याय का विचार होता है। इसका अर्थ क्या होता है, ये जो शरीर है, ये शरीर कष्ट प्राप्ति के लिए एक बहुत सुंदर यंत्र है ना। एक 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 यंत्र के द्वारा कोई कार्य साधन होता है। जैसे गाड़ी से हम क्या होता है, गाड़ी एक यंत्र है, गाड़ी से हम चल सकते हैं, हम तेज एक जगह से और दूसरी जगह जा सकते हैं। प्लेन एक यंत्र है, उससे हम क्या कर सकते हैं, हवाई जहाज से हम उड़ के बहुत जल्दी जल्दी एक स्थान से और एक स्थान जा सकते हैं। तो ऐसे ही ये शरीर एक यंत्र है, और ये यंत्र का उद्देश्य क्या है, किस लिए शरीर है, कष्ट प्राप्ति के एक यंत्र। तो ऐसे न्याय से विचार होता है कि शरीर कष्ट प्राप्ति के यंत्र है। न्याय तब विचार होता है, तो कष्ट तो हम तो नहीं चाहते हैं, फिर क्यों हमें कष्ट मिलता है। तो उसको जब विचार होता है, तब ये विचार शुरू होता है कि हम जिस जगह में हैं वहां हम अगर रहेंगे तो कष्ट मिलेगा। तो जगह कैसी है, उसका जो विचार है वो है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन से विचार ऐसे होता है कि ये पृथ्वी जो है, इस भौतिक जगत जो है, ये एक बहुत सूक्ष्म उपादान से तैयार हुआ है, उसका नाम है परमाणु। अणु से भी जो छोटा है वो है परम अणु या परमाणु। ये सारे भौतिक जगत उस परमाणु से ही तैयार हुआ है। और परंतु हमारे इंद्रिय की अनुभूति के कारण हम ऐसे ऐसे दर्शन करते हैं, अर्थात हम यहां देख रहे हैं, ये एक स्तंभ है, वहां दीवार है, ये जमीन है, परंतु असल में यह क्या है, हम देखते हैं कि ये पत्थर है, ये काठ है। तो काठ क्या है, ये जो है ये बुक स्टैंड है, परंतु असल में ये सब क्या है, परमाणु का समन्वय। असल में ये नहीं है, असल में सब परमाणु है, परंतु हमारे इंद्रिय के कारण इसका ऐसा अनुभूति हो रहा है। परमाणु एक स्थिति में इसको कठिन मालूम होता है, और एक स्थिति में इसको तरल मालूम होता है, और एक स्थिति में इसको अग्नि आग्नेय मालूम होता है, और एक स्थिति में इसके वायवीय अर्थात वायु जैसा मालूम होता है, और आकाश। तो ऐसे पंचभूत से ये सारे संसार बना हुआ है, परंतु असल में सारे संसार जो है ये परमाणु का ही समष्टि है, असल में नहीं है, परंतु ऐसे मालूम होता है। ये भी एक वैदिक दर्शन है, जिसको वैशेषिक दर्शन या परमाणुवाद कहा गया है। तब आता है इस जगत का तो और विश्लेषण किया करके देखते हैं क्या है ये जगत। तब आता है सांख का उद्देश्य होता है, उसको विचार करके इसको विश्लेषण करना, विचार के द्वारा विश्लेषण। और वो विश्लेषण कैसे होते हैं सांख्य में? वैसे 24 तत्व हैं स्वाभाविक विचार से, वो 24 तत्व हैं पंचभूत, पंचेंद्रिय, पंचकर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच इंद्रिय का विषय, पंच विषय जैसे पांच इंद्रियां हैं, आंखें, कान, नाक, जीभा और त्वचा। और ये पांच इंद्रिय का विषय कैसा क्या हो रहा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो वैसे पांच इंद्रिय का विषय, पांच इंद्रिया मतलब पांच 10 इंद्रिय है, एक कर्मेंद्रिय, एक ज्ञानेन्द्रिय। जिस इंद्रिय के द्वारा हम कर्म करते हैं उसको कर्मेंद्रिय कहा जाता है, जिस इंद्रिय के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त होते हैं उसे ज्ञानेन्द्रिय कहा गया है। तो वैसे पांच कर्मेंद्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रिय हुआ 10, और पांच इंद्रिय का विषय 15, और पांच है उपादान, पंच महाभूत जिससे इस भौतिक जगत का सृष्टि हुआ है। तो पांच, तो 15 और पांच कितना हुआ? 20। और उसके बाद 3 सूक्ष्म पदार्थ है, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। ये है तो 20 और 20 प्लस 3 हुआ 23। और अंत में और एक विश्लेषण ऐसे हुआ, उसे महत्व कहा गया, तो हुआ 24। मन, बुद्धि, अहंकार है 3 सूक्ष्म उपादान। हाँ, अहंकार, ठीक है, अहंकार और सुनाई नहीं दिया। ओके, और अंत में क्या है? 24, ये हुआ 23, 20 और प्लस 3, और 24वां क्या है? सुना था आप? हाँ, वो क्या था? वो क्या था 24 तत्व क्या था? अच्छा, वो है महत तत्व। तो 24 और उसके बाद 25 तत्व है, 25वां विचार हुआ, वो है आत्मा, और 26 है परम आत्मा। 26वां है परमात्मा। तो उसके बाद तो ये पर आत्मा है और परम आत्मा है। तो आत्मा के, परमात्मा के साथ आत्मा कैसे संयोग स्थापन कर सकता है? वो जो प्रक्रिया है वो है और एक दर्शन जो है योग। योग का मतलब क्या है? युक्त होना। किसको किसके साथ युक्त होना है? आत्मा को परमात्मा के साथ। हम आत्मा हैं और हमारे जो श्रोत्र हैं जिनसे हम सब आए हैं उनके साथ हम कैसे युक्त हो सकते हैं? वो जो प्रक्रिया है वो है योग। उसका 8 अंग है, इसके कारण उसे अष्टांग योग कहा गया है। योग वो 8 अंग, योग का 8 अंग क्या है? 8 अंग है याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण और समाधि। तो ये समाधि के समाधि में अष्टांग योग के द्वारा हम परमात्मा को जो जिन्हें जिन्होंने हमारे हृदय में विराजमान है हम उनको दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। अर्थात योग का उद्देश्य क्या है? योग का असल उद्देश्य है परमात्मा के साथ हमारा जो संपर्क है वो संपर्क को स्थापना। तो कितना दर्शन हमको अब तक कवर किया है? मैं सब मिलकर कितना होता है? छह होता है। तो अब तक में पांच हो चुका है। एक तो है पूर्व मीमांसा और पूर्व उसके बाद न्याय के बाद वैशेषिक के बाद शांख के बाद योग। कितना हुआ है? पांच हुआ है। और उसके बाद है पूर्व उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का मतलब है अंतिम सिद्धांत मीमांसा। अंतिम मीमांसा क्या है? जब आत्मा जब परमात्मा के साथ संपर्क जोड़ लेता है तब आप विचार कीजिए तब क्या होता है। स्वाभाविक रूप से परम आत्मा क्या कैसे है? परमात्मा परम है, महान है, श्रेष्ठ है। और आत्मा कैसा है? आत्मा अणु है, क्षुद्र है। तो कोई क्षुद्र व्यक्ति जब कोई महान व्यक्ति के सामने जाते हैं तो उसका मनोभाव कैसा होता है, उसका आचरण कैसा होता है, आप विचार किए हैं? दीन भाव आता है। मतलब अपने आप को उनके सामने सर झुका लेते हैं, समर्पण कर देते हैं। तो ये जो समर्पण जो है भगवान के सामने, भगवान परमात्मा तो भगवान ही है और भगवान को दर्शन के बाद जब हम भगवान के सामने अपने आप को समर्पण कर देते हैं वो है उत्तर मीमांसा। भगवान के पास समर्पण करना ही आत्मा का कर्तव्य है। तो ये जो समर्पण, ये समर्पण ही है भक्ति। तो आप देखते हैं इस विचार से वैदिक दर्शनों की छह दर्शनों के विचार से अंतिम सिद्धांत क्या बना? भगवान का उत्तर मीमांसा का क्या विचार है? भगवान के पास अपने आप को समर्पण करके भगवान को सेवा करना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ऐसे देखिए वेद का जो विचार है, जय श्री श्री राधा मदन मोहन की। और एक ये भी है, ये छह दर्शन जो है इसका पहला जो है वो कर्म के अनुसार है और बीच का जो चार है वो है ज्ञान का। जैसे देखिए पहला विचार क्या हुआ? कर्म मीमांसा या पूर्व मीमांसा। और उसके बाद जो न्याय वैशेषिक संख और योग, ये चार है ज्ञान की मान भी है ज्ञान के अनुसार। और अंत में जो उत्तर मीमांसा जो है भगवान को भक्ति करना वो है भक्ति, कर्म ज्ञान। अर्थात जब अंतिम फल जब मिल जाता है तो हमें विचार कि हमें क्या समझना पड़ेगा कि पूर्व का जो कुछ था वो सब कवर हो गया है ना। आप जब कोई बहुत ऊंचे मकान में चढ़ते हैं, छत पर जब चले जाते हैं, उसका मतलब ये है ना कि आप सारे फ्लोर्स को कवर करके तब छत पर गए। हम कभी कभी लिफ्ट से सीधा ऊपर चला जाता है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है कि हम
कितने फ्लोर
ऊपर आ गए हैं। तो ऐसे ही जब भक्ति के द्वारा जब हमें जब भक्ति प्राप्त होता है तो ये समझना है कि कर्म जो ज्ञान जो ये जो कुछ है हम सब कवर कर चुके हैं। क्यों कैसे? क्योंकि भगवान की कृपा से और भगवान का भक्त की कृपा से हमें ये सौभाग्य। लिफ्ट में चढ़ गए बस लिफ्ट हमको ले गया, हमको कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो उसके कारण जब भगवान को भक्ति होता है तो समझना पड़ेगा कि बाकी सब जो मार्ग है वो हम खत्म कर चुके हैं। हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है किसी को? आपको कोई प्रश्न है क्या? ओके, हरे कृष्ण। कीर्तन करते राधा माधव, डू यू हैव अ क्वेश्चन? Should I answer some other time? Since the question is in English and I have to answer in English. Jai Shri Ram.